ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पात्र रविवार 30 मार्च 2025 के लिए है। विषय वास्तविकता, स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा की आंखें धार्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उत्तरदायी ध्यान अबरानियों। सो हे भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, क्योंकि वो मूसा से इतना बढ़कर महिमा के युगे समझा गया है, जितना के घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। पर मसीह पुत्र के नियन उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घुमंड पर अनंत तक दृढ़ से स्थिर रहें। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जान पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहें। पाठ उपदेश बाइबल में से शमूएल। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मत्ती। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो, कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यूहन्ना तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर को चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये तो मसीह नहीं है। सो वो नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। मत्ती। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरानियों की रीतियों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतियों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की, कि ये लोग होंठों से तो मेरी आज्ञा करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। मरकस। और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरू से निकली थी, तो तिमाई का पुत्र बरतमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढारस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और तोमा, जो देदुमस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नितनेल और जब्दी का पुत्र, और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे हुए। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वो निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दहनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि ये प्रभु है, कमर में अंगराखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को ही आओ ना हुआ कि उससे पूछें कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि हो ना हो ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछलियां भी। यशाया। ऐ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वचा। प्रकाशित वाक्य। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सही तर्क के लिए विचार से पहले केवल एक तथ्य होना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। आध्यात्मिक वास्तविकता सभी चीजों में वैज्ञानिक तथ्य है। मनुष्य और पूरे ब्रह्मांड की कार्रवाई में दोहराया गया आध्यात्मिक तथ्य सामंजस्यपूर्ण है और सत्य का आदर्श है। आध्यात्मिक तथ्य उल्टे नहीं है, विपरीत, विसंगति, जिसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है, वास्तविक नहीं है। वास्तविकता और उसके विज्ञान में होने के क्रम को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एक के रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ बुद्धि ज्ञान अस्तित्व अमृता कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं। अनंत दिव्य सिद्धांत प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियाँ। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। आत्मा के बारे में हम सब सही रूप से जानते हैं कि ईश्वर ईश्वरी सिद्धांत से आता है और ये मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से सीखा जाता है। यदि इस विज्ञान को अच्छी तरह से सीखा और ठीक से पचा लिया गया है तो हम सत्य को इससे अधिक सटीक रूप से जान सकते हैं, जितना कि खगोला शास्त्री तारों को पढ़ सकते हैं या किसी ग्रहण की गणना कर सकते हैं। ये मन की बात पढ़ना ज्योतिषी के विपरीत है। ये आध्यात्मिक समझ की रोशनी है जो आत्मा की समता को प्रदर्शित करती है, भावतिक अर्थ की नहीं। ये आत्मा बोध मानव मन में तब आता है जब जब उत्तरार्ध दिव्य मन को उपजाता है। इस तरह के अंतर्ज्ञान से पता चलता है कि जो कोई भी सिद्ध भाव को बनाता है और बनाए रखता है वो किसी भी व्यक्ति को अच्छा करने के लिए सक्षम बनाता है लेकिन बुराई को नहीं। जब आप इस तरीके से मानव मन को पढ़ने और उस त्रुटि को समझने में सक्षम हो जाएंगे जिसे आप नष्ट कर देंगे तो आप उपचार के संपूर्ण विज्ञान तक पहुंच जाएंगे। सामरी स्त्री ने कहा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये तो मसीह नहीं है। चूंकि ईश्वर सब है इसलिए उसकी निष्पक्षता के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर आत्मा ने अकेले सभी कुछ बनाया है और इसे अच्छा कहा, इसलिए बुराई अच्छाई के विपरीत है, असत्य है और भगवान का उत्पाद नहीं हो सकता। शास्त्र कहते हैं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। फिर ये प्रतीत होने वाली शक्ति क्या है जो ईश्वर से स्वतंत्र है, जो बीमारी का कारण बनता है और इसे ठीक करता है? ये विश्वास के त्रुटि नश्वर मन का नियम हर दृष्टि से गलत, पाप बीमारी और मौत को गले लगाने वाले के अलावा क्या है? ये सत्य के और आध्यात्मिक नियम के अमर मन के बिल्कुल विपरीत है। ये परमेश्वर के व्यवहार की भलाई की अनुसार नहीं है कि वो मनुष्य को बीमार कर दे फिर मनुष्य को खुद को ठीक करने के लिए छोड़ दे। ये मानना बेतुका है कि सामग्री बीमारी का कारण है और इलाज दोनों कर सकता है, या ये कि आत्मा ईश्वर बीमारी पैदा करता है और सामग्री पर अपना उपचार छोड़ देता है। हमें आशिद्ध विज्ञान का परित्याग करना चाहिए और ऑन्कोलॉजी को अपनाना चाहिए, वास्तविक होने का विज्ञान। हमें केवल बाहरी अर्थों को स्वीकार करने के बजाय यथार्थवाद में गहराई से देखना चाहिए कि हम चीड़ के पेड़ से आड़ू इकट्ठा कर सकते हैं या क्लास होने की सहमति सीख सकते हैं। फिर भी मनुष्यों के बीच सुधारात्मक मिशन में विज्ञान को जिस मार्ग पर चलना है उसके कुछ प्रमुख भ्रम भी उतने ही तार्क संगत हैं। भ्रम नाम ही शून्यता की ओर संकेत करता है। यहूदी और अन्य जातियों में तीव्र शारीरिक संवेदनाएं हो सकती हैं लेकिन नश्वर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यीशु जानता था कि वो पीड़ित दुष्ट और व्यभिचारी है। वो आध्यात्मिक से अधिक सामग्री की तलाश में है। भावतिकवाद पर उनका जोर तेज था लेकिन महत्वपूर्ण था। उसने कभी भी कठोर निंदा को पाखंड नहीं दिया है। बच्चों को उनके पाथों में से सत्य उपचार क्रिश्चियन विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए और बीमारी के बारे में सिद्धांतों और विचारों पर चर्चा मनोरंजन से दूर करना चाहिए। त्रुटि के अनुभव और उसके कुष्ठों को रोकने के लिए अपने बच्चों के मन से पापी या रोगग्रस्त विचारों को दूर रखें। उत्तरार्ध को पूरब के समान सिद्धांत पर बाहर रखा जाना चाहिए। ये क्रिश्चियन विज्ञान को जल्दी उपलब्ध करता है। कुछ इनवैलिड तथ्यों को जानने या मामले की भ्रांति और इसके कठित कानूनों के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने भावतिक देवताओं के लिए थोड़ा अधिक समय समर्पित करते हैं। जीवन और पदार्थ की बुद्धि में विश्वास से छुप के रहते हैं और ये उपेक्षा करते हैं कि ये त्रुटि उनके लिए और अधिक करेगी। जब वो एकमात्र जीवित और सच्चे ईश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपके स्पष्टीकरण पर अधीर मन के विज्ञान की जांच करने के लिए अनैच्छिक, जो उन्हें उसकी शिकायतों से छुटकारा दिलाएगा, वो झूठे विश्वासों को गले लगाते हैं और भ्रामिक परिणाम भुगतते हैं। जैसा कि नश्वर भगवान और मनुष्य के बारे में अधिक सही दृष्टिकोण से प्राप्त करते हैं, सृष्टि की बहुपक्षी वास्तवें जो पहले अदृश्य थी दृश्यमान हो जाएंगी। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो ये समझ आत्मा पूर्णता में विस्तारित होगी, सभी को ईश्वर में मिल जाएगी, अच्छाई होगी और किसी अन्य चेतना की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मा और उसके स्वरूप ही होने का एकमात्र यथार्थ है। आत्मा के माइक्रोस्कोप के तहत पदार्थ गायब हो जाता है, सत्य से पाप का नाश होता है और बीमारी और मृत्यु को यीशु ने दूर किया, जिसने उन्हें त्रुटि का रूप दिया। आध्यात्मिक जीवन और आशीर्वाद ही प्रमाण हैं, जिसके द्वारा हम सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं और उस अकांति शांति को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम को अविश्वासित करने से आती है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं, तो हम भगवान की रचना को समझेंगे, पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।